प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम में यहेजकेल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और महिमा। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन को हम आरंभ करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से यहेजकेल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर किस रीति से कहता है कि मैं स्वयं सुधि लूंगा। जी हाँ, परमेश्वर इसराइलियों की सुधि लेना चाहता है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे जिसका विषय है एदोम को दंड और इसराइल को पाप का दंड एवं क्षमा। मित्रों, अध्याय 35 और 36 में इसराइल के भावी पुनर्स्थापन की भविष्यवाणी है। उनके स्वदेश में शांति से बसने से पूर्व दो बातों का होना आवश्यक है। पहला, एदोम को दंड मिलेगा। दूसरा, इसराइल को पापों का दंड मिलेगा और क्षमा भी मिलेगी। एदोम के दंड की भविष्यवाणी तो पूरी हो चुकी है, परंतु यह इसराइल के शत्रुओं के दंड की भविष्यवाणी अभी भी एक भावी घटना है। तो आइए हम देखते हैं एदोम को दंड। अध्याय 35 में एदोम को दंड और उसके विलोप होने की भविष्यवाणी है। यह इसराइल के पुनर्स्थापन से पहले होना है। तो आइए हम यहेजकेल की पुस्तक 35 अध्याय उसके 1-4 पद को पढ़ें। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह सेईर पहाड़ की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे सेईर पहाड़, मैं तेरे विरुद्ध हूं और अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तुझे उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। मैं तेरे नगरों को खंडहर कर दूंगा और तू उजाड़ हो जाएगा, तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। ये पद एदोम से संबंधित हैं। वह चट्टानी शहर पेत्रा भी था। वह नगर तो आज भी वहां है, परंतु उसके जैसा उजाड़ स्थान वहां दूसरा नहीं है। यहेजकेल 35 के 5 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तू इसराइलियों से युग युग की शत्रुता रखता था और उनकी विपत्ति के समय जब उनके अधर्म के दंड का समय पहुंचा तब उन्हें तलवार से मारे जाने को दे दिया। ध्यान रखें, परमेश्वर एदोम को दंड देने का कारण भी बताता है। एदोमी याकूब के भाई एसाव के वंशज थे। एसाव याकूब का कट्टर दुश्मन हो गया था और एदोमी अन्यों की तुलना में इसराइल को सबसे अधिक हानि पहुंचाते थे। एदोम आज के युग में परमेश्वर के बैरी का प्रतिनिधि है जो ख्रिस्त विरोधी होगा। यहेजकेल 35 उसके 9 पद में लिखा है, मैं तुझे युग युग के लिए उजाड़ कर दूंगा और तेरे नगर फिर ना बसेंगे, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। अध्याय 25 उसके 12-14 पद में यहेजकेल एदोम के दंड की भविष्यवाणी कर चुका है, तो वह यहां फिर इसका उल्लेख क्यों कर रहा है? मेरे विचार में यह इसलिए है कि परमेश्वर इसराइल के लिए अपना कार्यक्रम प्रकट करना चाहता है। वे फिर से अपने देश में स्थापित किए जाएंगे जो आशीषों का स्थान है। वहां वे शांति में वास करेंगे, परंतु उसके शत्रु अभी भी हैं और परमेश्वर उन्हें दंड देगा। वे स्वदेश में आकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और शांति में आशीषों से पूर्ण वास करेंगे। उनका भविष्य कैसा महिमामय होगा। प्रियो, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 35 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 36 से जारी रखेंगे। इसमें हम देखेंगे इसराइल को पापों का दंड एवं समाधान। अध्याय 36 में हम देखेंगे कि स्वदेश में पुनः स्थापित होने के लिए उन्हें पापों का दंड दिया जाएगा, इसके पश्चात उन्हें क्षमा किया जाएगा। यहेजकेल 36 अध्याय के 5 पद में लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, निश्चय मैंने अपनी जलन की आग में बची हुई जातियों के और सारे एदोम के विरोध में कहा है कि जिन्होंने मेरे देश को अपने मन के पूरे आनंद और अभिमान से अपने अधिकार में किया है कि वह पराया होकर लूटा जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर संकल्प कर चुका है कि दुष्ट पृथ्वी के अधिकारी नहीं होंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 5 पद में उसने स्पष्ट कहा है कि नम्र जन पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज नम्र जन पृथ्वी के अधिकारी नहीं है, आज दुष्टों का राज्य है और वे ही समृद्ध हैं। इस अध्याय में भविष्यवाणी है कि इसराइल का पुनरुद्वार होगा। आप वहां का भ्रमण करें तो आप देखेंगे कि यह भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है। कुछ लोग सोचते हैं कि भविष्यवाणी वहां हर स्थान पर पूरी हो रही है, परंतु जब परमेश्वर उन्हें लौटा लाएगा तब भूमि भी आशीषित होगी और जैसा आज वहां है नहीं होगा। यहेजकेल 36 उसके 6-8 पद में लिखा है, इस कारण इसराइल के देश के विषय में भविष्यवाणी करके पहाड़ों पहाड़ियों नालों और तराइयों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो तुमने जातियों की निंदा सही है, इस कारण मैं अपनी बड़ी जलजलाहट से बोला हूँ। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने यह शपथ खाई है कि निसंदेह तुम्हारे चारों ओर जो जातियां उनको अपनी निंदा आप ही सहनी पड़ेगी, परंतु हे इसराइल के पहाड़ों तुम पर डालियां पनपेंगी और उनके फल मेरी प्रजा इसराइल के लिए लगेंगे, क्योंकि उसका लौट आना निकट है। उनका लौट आना निकट है। यह निकट शब्द परमेश्वर के लिए वही अर्थ नहीं रखता है जो हमारे लिए रखता है, क्योंकि उसके लिए एक दिन 1000 वर्ष है। यहेजकेल 36 उसके 16-18 पद में लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब इसराइल का घराना अपने देश में रहता था तब अपनी चाल चलन और कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे। उनकी चाल चलन मुझे ऋतुमती की अशुद्धता सी जान पड़ती थी, इसलिए जो हत्या उन्होंने देश में की और देश को अपने मूर्तों के द्वारा अशुद्ध किया, इसके कारण मैंने उन पर अपनी जलजलाहट भड़काई। मैं फिर से यहाँ पर कहता हूँ कि वहाँ की भूमि और प्रजा एक हैं। मूसा की व्यवस्था इसराइलियों के लिए ही नहीं थी, उस देश के लिए भी थी। यहेजकेल 36 के 19 पद में लिखा है, मैंने उन्हें जाति जाति में तितर बितर किया और वे देश देश में बिखर गए। उनके चाल चलन और कामों के अनुसार मैंने उनको दंड दिया। परमेश्वर कहता है कि मैंने उनको जाति जाति में तितर बितर किया, परंतु सुनिए कि वह क्या कहता है। यहेजकेल 36 उसके 21-23 पद में, परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली, जिसे इसराइल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था जहां वे गए थे। इस कारण तू इसराइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इसराइल के घराने, मैं इसकी तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर को अब भी इस पृथ्वी पर अपने नाम का मान रखना है। बहुत लोग हैं जो कलीसिया और मसीह जनों की निंदा करते हैं और परमेश्वर के नाम को अशुद्ध करते हैं। परमेश्वर इस पृथ्वी पर स्वयं को सिद्ध करेगा और अपने नाम को फिर से स्थापित करेगा। आज उसका नाम व्यर्थ में लेने से लोग चूकते नहीं हैं। परंतु परमेश्वर कहता है कि यह सब समाप्त होगा और वे उसका सम्मान करेंगे, यह उसका संसार है। यहेजकेल 36 उसके 26 पद में लिखा हुआ है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर कहता है कि वह क्या करेगा, एक परिवर्तन आएगा, मैं तुमको नया मन दूंगा और मांस का हृदय दूंगा, वे नया जन्म पाएंगे। यहेजकेल 36 अध्याय के 27 पद में हम पढ़ते हैं, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। योएल की भविष्यवाणी में उसके कहने का अर्थ यही था, वह दिन आता है जब परमेश्वर हर एक प्राणी पर अपना आत्मा उंडेलेगा, कुछ एक पर नहीं। पेंतिकोस के दिन पवित्र आत्मा कुछ पर ही उतरा था। पत्रस ने केवल यही कहा था, हमें शराबी समझकर हमारी निंदा मत करो। यह वैसा ही है जैसा योएल ने अंतिम दिनों के संबंध में कहा था, आत्मा कुछ पर उतरा है और परमेश्वर अपने नाम के निमित्त मनुष्यों को बुला रहा है। जिस पल आप मसीह की ओर फिरते हैं, उसी पल आप पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म को प्राप्त करते हैं। आप में पवित्र आत्मा अंतर्वास करके आपको बपतिस्मा देता है और आपको विश्वासियों की देह का अंग बनाया जाता है। परमेश्वर कहता है कि वह उस दिन अपना आत्मा उनमें डालेगा। यहेजकेल 36 उसके 28 और 29 पद में लिखा है, तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। वे अपने देश में होंगे और वहां समृद्धि होगी। परमेश्वर ने उन्हें सांसारिक आशीषों की प्रतिज्ञा दी थी और हमें आत्मिक आशीषों की। मित्रों, यह अध्याय एक महान भविष्यवाणी से अंत होता है। हम देखते हैं यहेजकेल 36 अध्याय उसके 35 से 38 पद में लिखा हुआ है, लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ था वह अदन की बारिशा हो गया और जो नगर खंडहर और उजाड़ हो गए और ढाए गए थे वे गढ़ वाले हुए और बसाए गए हैं। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी वे जान लेंगे कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं। मुझ यहोवा ने यह कहा और ऐसा ही करूंगा। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इसराइल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उनमें मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों के समान बढ़ाऊं, जैसे पवित्र समयों की भेड़ बकरियां अर्थात नियत पर्वों के समय यरूशलेम में की भेड़ बकरियां अनगिनत होती हैं, वैसे ही जो नगर अब खंडहर हैं, वे अनगिनत मनुष्यों के झुंडों से भर जाएंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजड़ा पड़ा था अदन की वाटिका बन गया है। आज आप चाहे तो कह सकते हैं, परंतु यह सच नहीं है। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। आज इसराइल में वे यह नहीं जानते हैं। जी हाँ, आज संसार भी यह नहीं जानता कि परमेश्वर है। परंतु मेरे प्रियो, वह दिन आता है जब इसराइल जानेंगे कि वह परमेश्वर है, अभी भी है, उनके मध्य में काम करना चाहता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि आपका उद्धारकर्ता कौन है? क्या आप जानते हैं कि आप पाप के अंधेरे में हैं? आपको एक छुड़ाने वाले की आवश्यकता है। आप विचार करें कि आप किसे जानते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि अध्याय 36 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 37 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है सूखी हड्डियों की तराई, इसराइल के पुनरुत्थान का चित्रण। आइए देखें सूखी हड्डियों की तराई। इस अध्याय में सूखी हड्डियों की तराई का दर्शन है। इस अध्याय का अर्थ निर्धारण इसराइल के भावी पुनरुत्थान से संबंधित है। यह पुनरुत्थान इसराइल की राष्ट्रीय पहचान तथा आत्मिक जागृति और पुनरुद्वार के संबंध में होगा, जिसकी भविष्यवाणी परमेश्वर ने पिछले अध्याय में की थी। यहाँ हमारे पास एक अद्भुत दर्शन है और मैं अति स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इस दर्शन का संबंध कलीसिया के मृतक पवित्र जनों के पुनरुत्थान से कदापि नहीं है। मेरे मित्रों, भविष्यवाणी को यथावत समझने से ही उसका अर्थ समझ में आता है। यहाँ इसराइल के बारे में चर्चा की जा रही है, न कि मनुष्यों के आत्मिक या शारीरिक पुनरुत्थान की। मैं इस अध्याय को शीर्षक देता हूँ इसराइल का पुनरुत्थान। मेरे विचार में यह शीर्षक तर्क संगत है, परंतु इसे कभी कभी गलत भी समझा जाता है। मेरी इस बात को कुछ लोग समझते हैं कि मैं अब्राहम से लेकर अब तक के सब मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में कह रहा हूं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। यह निश्चय ही इसराइल राष्ट्र के संबंध में ही है। परमेश्वर यहेजकेल को एक जीवित दृष्टांत देता है, जिसके लिए वह उसे सूखी हड्डियों की तराई में ले जाता है। आइए आप मेरे साथ पढ़िए यहेजकेल 37 उसका एक पद। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। नबूकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम के विनाश से पूर्व अध्याय 8 में यहेजकेल को आत्मा यरूशलेम ले गया था। मेरे विचार में परमेश्वर के लिए यह काम असंभव नहीं है। आज मनुष्य अपने बनाए हुए हवाई जहाज द्वारा आधे दिन में आधा संसार पार कर लेता है, तो परमेश्वर अपने अनुरूप किसी कार्य को क्यों नहीं कर सकता है? अतः यहेजकेल को यरूशलेम ले जाने में परमेश्वर को कोई भी कठिनाई नहीं थी। यहेजकेल यहाँ पर कहता है, वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। तराई हड्डियों से भरी हुई थी। परमेश्वर उसे यथार्थ में उठाकर वहां ले गया। यहेजकेल 37 के दो पद में लिखा है, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। 1849 में मनुष्यों का एक दल कैलिफोर्निया की मौत की तराई का दर्शन पाने के लिए निकल पड़ा। वे मृत्यु और विनाश को देखना चाहते थे। वे निकल तो पड़े, परंतु वहां जाकर फंस गए। भला हो दो पुरुषों का जिन्होंने साहस धरकर वह घाटी पार की और उनके लिए संसाधन जुटाए तथा उन्हें बचाया गया। यहेजकेल ने 25 वर्ष पूर्व जो देखा वह इससे भी अधिक सुनसान एवं निराशजनक था। यह तराई तो और भी अधिक सुनसान और अधिक भयानक तथा विस्मयकारी थी। वह घाटी हड्डियों से भरी थी। उसकी विशेषता यह थी कि वे सब हड्डियां सूखी थी। यहेजकेल 37 के तीन पद में लिखा है, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। मेरे मित्रों, यह तराई सब जगह सूखी हड्डियों से भरी थी। परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? यहेजकेल ने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। दूसरे शब्दों में, मैं नहीं समझता कैसे, पर तू ही जानता है कि वे जीवित होंगी या नहीं। मेरी तो समझ से बाहर है। तब लिखा है यहेजकेल 37 के चार पद में, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सुखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। मेरे मित्रों, यह व्यंग वरण हास्यास्पद है। मैं सदा कहता हूं कि परमेश्वर विनोदी स्वभाव का है। यह एक प्रमाण है। कल्पना कीजिए, परमेश्वर यहेजकेल से कह रहा है, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सुखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। मेरे विचार में तो यहेजकेल ने कहा होगा, हे परमेश्वर, तू क्या यह कहना चाहता है कि मैं इन सूखी हड्डियों से बातें करूं? मैं ऐसा करूंगा तो पागलों के अस्पताल वाले मेरी खोज में निकल पड़ेंगे। निश्चय ही यह किसी उपदेश की अच्छी प्रस्तावना है। ऐसा कोई प्रचारक नहीं होगा जो आराधना में अपनी कलीसिया को संबोधित करते हुए कहे, मेरी प्रिय सुखी हड्डियों। मेरा एक मित्र बड़ा ही विनोदी है। उसने एक दिन मुझसे कहा, मेरी कलीसिया ऐसी है कि मैं उसे संबोधित करते समय यहेजकेल की नाई कहना चाहता हूँ। वे यहेजकेल द्वारा देखी गई हड्डियों के समान सूखे हैं, परंतु साहस नहीं होता है। यहेजकेल इस हड्डी भरी तराई को देख रहा है और उसे उन्हें वचन सुनाना है। प्रत्येक कलीसिया में उद्धार प्राप्त और उद्धार रहित सदस्य होते हैं। उद्धार प्राप्त मनुष्यों के पास सुनने के लिए कान होते हैं, परंतु वे सुनते नहीं, और वे जो उद्धार से रहित हैं, वे अपने अपराधों और पाप में भरे हुए हैं। उनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ है। उनका प्रचारक यहेजकेल के समान असहाय है। कोई भी प्रचारक खोए हुओं की वास्तविक दशा समझता है। वह उनसे बात करने में अपनी असहाय स्थिति को भी समझता है। यहेजकेल को इन सूखी हड्डियों से कहना था, मैं चाहता हूं कि तुम सुनो परमेश्वर क्या कहता है। आगे हम पढ़ेंगे यहेजकेल 37 उसके 5 से 6 पद तक। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारे नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू उनसे कहे कि मैं उन्हें जीवित करूंगा। हमारी आज यही दशा है। यदि परमेश्वर काम न करे तो किसी में आत्मिक जीवन नहीं होगा। मुझे पत्रों में लोग लिखते हैं, आपने मुझे मुक्ति दिलाई है। मेरे मित्रों, मैं किसी को मुक्ति नहीं दिला सकता। मैं तो केवल सूखी हड्डियों को परमेश्वर का वचन सुना सकता हूँ। परमेश्वर का आत्मा ही है जो जीवन देता है। जीवन का एकमात्र यही मार्ग है। इन पदों की प्रासंगिकता यही है, परंतु हम इन पदों का अनुपम अर्थ भी देखेंगे। यहेजकेल 37 के 7 पद में लिखा है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूई डोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। यहेजकेल परमेश्वर की आज्ञा मानता था। वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मेरे विचार में यह देख यहेजकेल विमूढ़ हो गया होगा। यहेजकेल 37 उसके 8 पद में लिखा है, मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गईं, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। यहां एक प्रक्रिया है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। हड्डियों की पहली दशा है कि वे बिखरी हुई हैं, सूखी हैं और मृतक हैं। तदुपरांत उनमें गतिविधि दिखाई देती है और फिर उन पर मांस आता है। यह प्रक्रिया तत्कालिक नहीं है। दर्शन में ये केवल लाशें हैं। वे मनुष्य तो हैं, परंतु उनमें जीवन नहीं है। यहेजकेल 37 उसके 9 और 10 पद में लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठें। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। यहेजकेल ने वचन सुनाया और उन लाशों में जीवन आ गया। यह प्रक्रिया आदि में मनुष्य की उत्पत्ति के समान है। परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया। यहेजकेल ने हड्डियों से आरंभ किया, परंतु परमेश्वर ने पृथ्वी की मिट्टी से आरंभ किया और फिर मनुष्य में जीवन डाल दिया। मेरे मित्रों, इन हड्डियों में जो हुआ उसके 3 चरण हैं। पहला, वे मृतक हड्डियां बिखरी हुई थी दूसरा वे संयोजित हुई और उन पर मांस आया, परंतु वे अब भी मृतक थी। तीसरा वे जीवित की गई। इन तीन चरणों में बाइबल की भविष्यवाणी समझने की कुंजी है, विशेष करके इसराइल राष्ट्र की। अगला पद इस दर्शन का अर्थ स्पष्ट करता है, यहेजकेल 37 उसके 11 पद में। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इसराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इसराइल के सारे घराने की उपमा है। जी हाँ, यह कलीसिया नहीं इसराइल है। वे कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गईं और हमारी आशा जाती रही। मेरे मित्रों, बंधुआई में प्रवासी इसराइल एक सीमा से दूसरी सीमा पार कर गए थे। जब तक झूठे भविष्यद्वक्ता कहते थे कि वह स्वदेश लौटेंगे और यरूशलेम था, उनमें एक झूठी आशा व्याप्त थी। अब क्योंकि यरूशलेम उजड़ गया था, वे दूसरी ओर सीमा पार कर रहे थे, जिसे मनोवैज्ञानिक एक प्रकार का पागलपन भी कहते हैं। एक समय तो उनकी आशा ऊंचाइयों पर थी, परंतु अब निराशा गहराइयों को छू रही थी। उनकी मानसिक स्थिति बहुत बुरी थी। लिखा है, हमारी आशा जाती रही। यह दर्शन उन्हें आशा बंधाने के लिए था कि उनकी आशा जाती नहीं रही, संपूर्ण इसराइल घराने की आशा है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आशा नहीं होने पर भी परमेश्वर उन्हें बताता है कि उनके लिए आशा है। आज आपके लिए और मेरे जीवन के लिए भी एक आशा है। यदि आप निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, आप सोचते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो आज के इस वचन के प्रकाशन के द्वारा आप इस बात को समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन के सूखेपन में भी हरियाली डाल सकता है, ला सकता है, आपके जीवन को आनंद से भर सकता है। सिर्फ आपको एक काम करना है कि आप प्रभु यीशु के पास आ जाएं। मेरे प्रियो, वह आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि आप आनंद उठाएं। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आप इस वचन के द्वारा अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर 9958820414, और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
पापों से धोकर तूने मुझे, मुझको इतना प्यार दिया, तू इतना अच्छा मेरे प्रभु, तेरी हरदम महिमा करूं। पापों से धोकर तूने मुझे, मुझको इतना प्यार दिया, तू इतना अच्छा मेरे प्रभु, तेरी हरदम महिमा करूं।